नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। थॉमस बी एजर की पुस्तक द एसेंशियल्स ऑफ सार सिंथेटिक अपर्चर रडार की अवधारणात्मक समझ देने वाली तकनीकी किंतु सुलभ मार्गदर्शिका है। इसका विषय सार है, एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग तकनीक जो स्वयं रेडियो तरंगे भेजती है और लौटे संकेतों से पृथ्वी की छवि बनाती है। इसलिए यह बादलों, धुंध और रात के अंधेरे में भी उपयोगी अवलोकन कर सकती है जहां सामान्य प्रकाशीय इमेजिंग सीमित हो जाती है। पुस्तक का उद्देश्य गहन विद्युत इंजीनियरिंग गणित से पाठक को दबाना नहीं, बल्कि सार के काम करने, उसकी छवियों को पढ़ने और उसके उत्पादों का व्यावहारिक अर्थ समझाना है। एजर सार की असामान्य दृश्य भाषा, भू अवस्थिति से उसके संबंध, सेंसर डिजाइन और भविष्य की संभावनाओं को 22 अध्यायों में रखते हैं। लगभग 300 चित्रों और सीमित सरल समीकरणों के सहारे यह पुस्तक विशेष रूप से उन रिमोट सेंसिंग विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए लिखी गई है जिन्हें सार की क्षमता समझनी है पर उन्नत इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सार को सक्रिय सेंसर के रूप में समझना, बादलों और अंधकार से परे अवलोकन। पुस्तक का पहला केंद्रीय विचार यह है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार को कैमरे की तरह नहीं, सक्रिय सेंसर की तरह समझना चाहिए। प्रकाशीय कैमरा सूर्य या अन्य बाहरी प्रकाश पर निर्भर होता है, जबकि सार अपने माइक्रोवेव संकेत पृथ्वी की ओर भेजता है और सतह से लौटने वाली ऊर्जा को मापता है। इस कारण रात का अंधकार उसके लिए मूल बाधा नहीं है। माइक्रोवेव तरंगे अनेक बादली परिस्थितियों में भी उपयोगी रहती है, इसलिए सार उन क्षेत्रों और घटनाओं के अध्ययन में मूल्यवान है जहां लगातार बादल हो या त्वरित निगरानी चाहिए। एजर इसे लाइडार का प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक तकनीक मानने का आधार देते हैं। दोनों सक्रिय प्रणालियां हैं पर उनकी तरंग दैर्ध्य, संकेतों के सतह से संपर्क और प्राप्त जानकारी का स्वरूप अलग है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि सार की शक्ति केवल किसी वस्तु को देख लेने में नहीं है। लौटे संकेत की तीव्रता और अन्य गुण सतह की खुरदराहट, नमी, ज्यामिति तथा सेंसर और लक्ष्य के बीच की स्थिति से प्रभावित होते हैं। अतः सार डेटा का अर्थ निकालना भौतिक परिस्थितियों को समझने की प्रक्रिया है, केवल चित्र पहचानने का काम नहीं। दूसरा, सार छवियों की अलग दृश्य भाषा, चमक, छाया और ज्यामिति का अर्थ सार को कठिन मानने का एक बड़ा कारण उसकी छवियों का अपरिचित दिखना है। एजर इस दूरी को कम करने के लिए बताते हैं कि सार इमेज में उजला या गहरा भाग साधारण रंग अथवा दृश्य प्रकाश का संकेत नहीं होता। पिक्सल की चमक मुख्यतः लौटे रडार संकेत की शक्ति को दिखाती है। कोई सतह उसकी संरचना, ढलान, नमी, दिशा और रडार की ओर ऊर्जा लौटाने की क्षमता के कारण चमकदार दिख सकती है। इसी तरह ऊंची इमारतें, पर्वतीय ढलान और अन्य ऊपरी वस्तुएं सार की साइड लुकिंग ज्यामिति के कारण ऐसे आकार बना सकती हैं जो प्रकाशीय फोटो से भिन्न हो। रडार छाया, संपीड़न और स्थानांतरण जैसे प्रभावों को समझे बिना किसी दृश्य की गलत व्याख्या हो सकती है। पुस्तक का अवधारणात्मक रुख यहां महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पाठक को छवि देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय पूछना सिखाती है कि सेंसर किस दिशा से देख रहा था, भूभाग का उन्मुखीकरण क्या था और कौन सा प्रकीर्णन व्यवहार संभव है। यह दृष्टिबाढ़ शहरी क्षेत्र, वनस्पति या भू आकृतियों से जुड़े सार उत्पादों को पढ़ने की बुनियादी क्षमता बनाती है। तीसरा, सार उत्पादों की व्यापकता। एकल चित्र से मापन और परिवर्तन विश्लेषण तक पुस्तक सार को केवल एक श्वेत श्याम इमेज देने वाली प्रणाली के रूप में सीमित नहीं करती। इसके एक प्रमुख भाग में सार उत्पादों का अवलोकन है जिससे पाठक समझ सके कि अलग प्रसंस्करण विधियां और अलग अधिग्रहण विन्यास पृथ्वी के बारे में अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। एक मूल रडार इमेज सतह से वापस आई ऊर्जा के पैटर्न दिखा सकती है, लेकिन अनेक अवलोकनों की तुलना से परिवर्तन का अध्ययन संभव होता है। यह क्षमता समय के साथ होने वाले बदलावों को पहचानने में उपयोगी हो सकती है बशर्ते देखने की ज्यामिति और डेटा गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाए। पुस्तक सार की क्षमता को उसके संकेत और उत्पाद के संबंध से जोड़ती है, न कि हर दृश्य को सीधे और निश्चित उत्तर देने वाला मानती है। यह महत्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षा है क्योंकि उत्पाद का नाम जानना पर्याप्त नहीं होता। उपयोगकर्ता को यह समझना होता है कि वह किस भौतिक गुण के प्रति संवेदनशील है, उसकी स्थानिक और कालिक सीमाएं क्या है और परिणाम को अन्य भूस्थानिक सूचना के साथ कैसे पढ़ा जाए। इस तरह एजर उत्पाद केंद्रित चर्चा को रिमोट सेंसिंग कार्यप्रवाह और जिम्मेदार व्याख्या से जोड़ते हैं। चौथा, भू अवस्थिति क्रांति में सार की भूमिका और मापन की उपयोगिता। एजर सार को भू अवस्थिति क्रांति के व्यापक संदर्भ में रखते हैं। इसका आशय केवल मानचित्र पर किसी स्थान की पहचान नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह, परिवर्तन और स्थानिक संबंधों के बारे में नियमित रूप से उपलब्ध होते जा रहे डेटा से है। सार उपग्रहों की क्षमता इस परिदृश्य में खास है क्योंकि वे मौसम और प्रकाश की सीमाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होकर पुनरावृत्त अवलोकन दे सकते हैं। फिर भी पुस्तक का दृष्टिकोण तकनीक के प्रति अंधा उत्साह नहीं है। किसी सार अवलोकन का उपयोगी होना सेंसर की कक्षा, देखने के कोण, रिजोल्यूशन, समयांतराल और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक ही स्थान को अलग दिशाओं या अलग समय पर देखने से संकेत बदल सकता है और उस बदलाव को वास्तविक भू परिवर्तन मानने से पहले कारणों की जांच जरूरी है। यह विचार भू स्थानिक निर्णयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार से प्राप्त सूचना को संदर्भ डेटा, स्थानीय ज्ञान और उपयुक्त प्रसंस्करण के साथ मिलाने पर ही उसका भरोसेमंद उपयोग बढ़ता है। पुस्तक इसीलिए डेटा उपलब्धता और डेटा व्याख्या के बीच का अंतर स्पष्ट करती है, जो आधुनिक रिमोट सेंसिंग अभ्यास का मूल अनुशासन है। अंत में इल्यूमिनेशन, सेंसर डिजाइन और छोटे उपग्रहों से बदलता सार भविष्य। पुस्तक के अंतिम हिस्सों में सार इल्यूमिनेशन और डिजाइन विचारों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि सेंसर की क्षमता केवल नाम या रिजोल्यूशन से तय नहीं होती। सार में प्रेषित तरंग, एंटीना, देखने की दिशा, कक्षा तथा संग्रहण की योजना मिलकर निर्धारित करते हैं कि कौन सा संकेत प्राप्त होगा और किस प्रकार की छवि या उत्पाद बनाया जा सकेगा। इल्यूमिनेशन का अर्थ यहां रडार द्वारा लक्ष्य को देखने और प्रकाशित करने की ज्यामिति है। यही ज्यामिति छाया, चमक और भू आकृति के प्रस्तुतीकरण को बदल सकती है। इसलिए अलग मिशनों के डेटा की तुलना करते समय सेंसर विन्यास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एजर भविष्य की चर्चा को भी इसी तकनीकी आधार से जोड़ते हैं। छोटे उपग्रहों और नए वाणिज्यिक सार मिशनों के उभरने से अधिक बार डेटा संग्रह और व्यापक पहुंच की संभावना बढ़ती है। लेकिन अधिक इमेज अपने आप बेहतर निष्कर्ष नहीं देती। उपयोगकर्ता को संग्रहण की उपयुक्तता, प्रसंस्करण की विश्वसनीयता और व्याख्या की सीमाएं समझनी होंगी। पुस्तक का मूल्य इसी संतुलन में है। वह सार की बढ़ती उपलब्धता को अवसर के रूप में देखती है, पर उसके वैज्ञानिक उपयोग के लिए आवश्यक समझ को केंद्र में रखती है। निष्कर्ष में, द एसेंशियल्स ऑफ सार उन रिमोट सेंसिंग विद्यार्थियों, भूस्थानिक विश्लेषकों, सर्वेक्षण और मानचित्रण पेशेवरों तथा निर्णयकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है जो सार डेटा से काम करना चाहते हैं लेकिन भारी सिग्नल प्रोसेसिंग गणित से शुरुआत नहीं करना चाहते। यह उन लाइडार या ऑप्टिकल इमेजिंग उपयोगकर्ताओं के लिए भी प्रासंगिक है जिन्हें समझना है कि रडार आधारित अवलोकन अलग क्यों दिखते हैं और उन्हें पूरक स्रोत के रूप में कैसे देखा जाए। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक सार इमेज को सामान्य फोटो मानने की गलती से बचना सीखता है। वह सेंसर ज्यामिति, लौटे संकेत, सतही गुणों और उत्पाद सीमाओं के आधार पर प्रश्न पूछने की आदत विकसित कर सकता है। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक सक्रिय संवेदन की उस भौतिक तर्क पद्धति को सुलभ बनाती है जिसके बिना बादल पार इमेजिंग की क्षमता भी भ्रामक लग सकती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता इसका अवधारणात्मक प्रवेश बिंदु है। एजर जटिल सार सिद्धांत को पूरी तरह छोड़ते नहीं, पर उसे सरल समीकरणों, विस्तृत व्याख्याओं और बड़ी संख्या में चित्रों के सहारे क्रमबद्ध करते हैं। 22 अध्यायों को 6 अपर्चरों में बांटने से तकनीक, इमेज व्याख्या, उत्पाद, भू अवस्थिति, डिजाइन और भविष्य एक ही ढांचे में आते हैं। इसलिए यह विशेषज्ञ संदर्भ ग्रंथ का पूर्ण विकल्प नहीं, बल्कि सार को समझने और आगे के तकनीकी अध्ययन के लिए ठोस उपयोगकर्ता केंद्रित आधार है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं थॉमस एगर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।